ரமோரிஹந்தாளம் ரமோ சித்தாளம் ரமோ வாயிரியாளம் ரமோ வஜ்ஜாயாளம் ரமோ லோயே ஸவிசாஹுரம் மங்களம் பகவான் வீரோ மங்களம் கௌதி மோகணி மங்களம் குந்த குந்தாத்யோ ஜெயனி தர்மோஸ்து மங்களம் சர்வ மங்கள மாங்கல்யம் சர்வ கல்யாண காரகம் பிரதானம் சர்வ தர்மாணாம் ஜெயனம் ஜயது சாஸ்னம் ஜெயனம் ஜயது சாஸ்னம் நம ஸ்ரீ வர்தமானாய் நிருதூத கலிலாத்மனே சாலோகானாம் த்ரிலோகானாம் யதி வித்யா தர்பணாயதி தீசியாமி சமீசீனம் தர்மம் கர்ம நிவர்ஹணம் சம்சார துக்கித சத்வான் யோதரத்துத்தமே சுகி சத்ருஷ்டி ஞான வ்ரத்தானி தர்மம் தர்மேஸ்வராவிது யதீய ப்ரத்யனீகானி ஹந்தி பவபததி.
சமாதி மரண கி சர்ச்சா சாலு ஹுயி. பேஜ் நம்பர் 445. अभी अपन ने समाधि मरण के बारे में मरण जीव को उपकारी ही ये बता रहे हैं. किसी के यहाँ कोई गमी हो और अपन कहें कि बहुत अच्छा हो, किसी को कोई रोग हो वो कहें बहुत अच्छा हुआ है, तो पिटाई होगी है ना. पर ये कहते हैं कि बड़ा उपकारी, इसलिए तुम दूसरों में लगाओ या न लगाओ अपने बारे में जरूर सोचो क्या उपकारी है. आज बताएंगे अपन को कि ये मृत्यु से उपकार क्या है, रोग हो जाना क्यों अच्छा है. जिस रोग से सारा जगत डरता है, टालना चाहता है, जाप देता है, भगवान को मनाता है, वो रोग आना अच्छा है, मरण होना अच्छा है. कोई अपनी बात नहीं माने ये बहुत अच्छा है, अपने मन का नहीं होना ये बहुत अच्छा है, अपने पुण्य का उदय नहीं आना, प्रतिकूलता बनी रहना ये अच्छा होगा. हाँ, तुम्हें यदि सुखी होना हो, आत्मा चाहिए, तो जगत से तुम्हारी रास्ता न्यारी होना चाहिए. जगत को अनुकूलता में अच्छा लगता है तो तुम्हें प्रतिकूलता में अच्छा लगना चाहिए. जगत को आत्मविस्मरण सुहाता है तो तुम्हें आत्मविस्मरण के साधन सुहाना चाहिए. तुम्हें रोग हो जाए तो ये रोग को बताने वाला ज्ञान जाग जाता है, इसलिए रोग अच्छा है. क्योंकि हम तो आत्मा के स्मरण करने के लिए जी रहे, सारी जगत से अलग चाल है ज्ञानी जन. ये मृत्यु को कल्प वृक्ष कहते, दातार कहते, बंदी गृह से छुड़ा रहा ये कहते. सड़े सड़ाए शरीर में कितने दिन रहते हैं, मुंह में दांतों में कीड़े पड़ गए, पाचन होता नहीं है, कान एक कान बंद हो गया तो दूसरा भी हो जाएगा, आंखें जवाब देने लगी हैं, इस देह में कितने दिन तक रहना चाहते. और यदि ऐसे ही सभी लोग ऐसे जीर्ण शीर्ण देह में रहते तो ये ढेर लग जाता बूढ़े लोग. तो ये तो बहुत अच्छा है कि मरण हो जाता है तो कम से कम एक गंदगी से बच जाता, नहीं तो अपना शरीर आपसे नहीं देखा जाता. इसमें आत्मानुशासन में आया कि हे भगवान, जो आंखें फूट जाती हैं बुढ़ापे में और कान बंद हो जाते हैं, ये बहुत अच्छा होता है. ऐसा देखा गुणभद्राचार्य कि आंखों में दिखता नहीं है, कानों में सुनाई नहीं देता, ये तो बहुत अच्छा है. तो क्यों अच्छा है कि ये कानों में सुनाई नहीं देता, तुम्हारी निंदा बहु बेटे करेंगे तो तुम सुनोगे कैसे. अब इतनी पाचक शक्ति तो है नहीं तुम्हारी, तो अच्छा है अब सुनाई नहीं देता, अब वो तुम्हें कितनी भी निंदा करे तुम्हें पता ही नहीं चलता क्या हो रहा, और आंखों में दिखाई नहीं देता, कम दिखाई देने लगा कि इसका अर्थ है कि अब तुम्हारा चेहरा बदलता जा रहा है, ये बाल काले से सफेद और सफेद काले मिक्स यानी कौन कौन सी रूप धारण करके आ रहा है, और ये तुमसे नहीं देखे जाएंगे ये सब चरित्र। तो आंख कमजोर होना, कानों में सुनाई नहीं पड़ना, ये सब वो कह रहे बहुत अच्छा है। ऐसी आज की चर्चा है 445 पेज पर। समाधि मरण तो अमृत देने वाला, अमृत क्या कहलाता चाहिए थी, अमृत मरने नहीं देगा ये तुम्हें समाधि मरण हो रहा है मरण, और वो कहते मरने नहीं देगा ये कौन, समाधि मरण, समाधि मरण मरने नहीं देगा यानी मैं नहीं मर रहा हूं ये सिखाएगा तुम, देह मरेगा और तुम अमर हो जाओगे। इस लोक में मृत्यु तो समस्त जगत के जीवों को आताप करने वाले, यानी उसके नाम से ही डरते, किंतु सम्यक ज्ञानी जीवों के लिए वह अमृत का साथ मोक्ष प्राप्त कराने वाली है। जैसे मिट्टी के कच्चे घड़े को अमृत रूप जल भरने के लिए अग्नि में पकाया जाता है, यदि कच्चे घड़े को अग्नि में विधि पूर्वक ना पकाया जाए तो घड़े में जल नहीं रखा जा सकता। अग्नि में एक बार पक जाने पर उस घड़े में बहुत समय तक जल भरकर रखा जा सकता है। उसी प्रकार मृत्यु के समय यदि एक बार समता भाव से ये भेद विज्ञान करके ये बात तुम्हारी जच गई, सहन हो गई, तो तुम्हारे जीवन में या तो पूर्ण आराधना हो तो निर्वाण होगा, और नहीं होगा तो कल्याण तो जरूर होगा, कुगति नहीं होगी। और जिसका समाधि मरण हो जाता है उसके 7-8 भाव से ज्यादा नहीं रहते, अधिक से अधिक, अधिक से अधिक 8 भाव होते, कम से कम 1-2 भाव में वो निर्वाण पा। और स्वामी जी ऐसा कहते थे कि इस काल में जिनकी ये तत्व की रुचि हो रही है इनके बहुत भाव होते ही नहीं, 3-4 भाव से ज्यादा नहीं लगे। अभी जो जिनको तत्व लग रहा ना अच्छा, इन सब जीवों की बहुत कम संसार की मर्यादा रह गई तभी अच्छा लग। देखो ये तत्व सुहाता नहीं सबको, कोई कहेगा तुम्हारा कुछ तुम कर सकते नहीं, तुम्हारा करता धरता पना नहीं चलता, ये बात उसे अच्छी लगे समझ लेना इसकी होनार अच्छी, और ये अच्छा लगे कि आपके करने से सब हुआ तो समझ लेना इसकी अभी घूमना बाकी बहुत। ये तो बात समझ में आने चाहिए ना, जो प्रकृति में वस्तु स्वरूप में सिद्धांत है जिसे सर्वज्ञ ने भी अपने उम्र में माना था, वही तीर्थंकर से बलि तिनकी नहीं चली, उनका भी शरीर छूटा तो उन्होंने भी इस सत्य को एक बार स्वीकार किया कि मेरा शरीर नहीं, मेरा अधिकार दूसरे द्रव्यों पर नहीं, कहीं एक परमाणु मात्र भी मेरा नहीं है, मुझे किसी के ऊपर अपना अनुशासन चलाना नहीं है, मुझे किसी के अनुशासन में रहना नहीं है, मेरे सर पर देव सास गुरु महाकारी तत्व है, इनकी आज्ञा में रहना, इतना भाग गया है उसका संसार ज्यादा नहीं, क्योंकि ये जी सुनने तैयार नहीं। अभी मौत की बातें चल रही, कौन आएगा यहाँ, तो अभी जैनियों का कलेजा, देखो मौत की बात सुनाओ तो आते, मरने की विद्या पढ़ाई जा रही, जैसे गांधी जी पढ़ाते थे ना कि तुम मरने तैयार हो, भारत की रक्षा करना है, हमें मारना नहीं है मरना है, बताओ इस फौज में तैयार हो। गांधी जी ने किसी पर पिस्तौल नहीं चलाई, हम खाएंगे गोली पर हम तुम्हें सिखा देंगे कि भारत हमारा, स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, भारत हमारा है, अंग्रेजों भारत छोड़ो वापस जाओ, ऐसे ये सिखा रहे अपने भगवान कि मौत आएगी और मैं नहीं मरूंगा। मौत तो आएगी बाबू जी, रोग तो आएंगे पर मैं रोगी नहीं होऊंगा, ऐसी विद्या पढ़ा रहे। कोई भी घबरा जाता है मृत्यु के नाम से। ये आदिनाथ का जीव था, महाबल राजा, दसवें भाव की बात, और उनका मंत्री था सुबुद्धि। तो उसने पूछा मुनिराज से, हे प्रभु हमारे राजा भव्य है कि अब? अरे भव्य कहते ये तो तीर्थंकर का धर्म, तो उसने तो अभी धर्म ही सुहाता ही नहीं। अरे उसका समय बहुत कम रह गया, 15 दिन या 1 महीने की आयु शेष, जाओ उसे धर्म में लगाओ। और गए और आयु बताई कि आपकी मुनिराज ने बताई कि 1 महीने की आयु शेष, तो भी धर्म में नहीं लगा, दान पुण्य में लगा था। चलो तीर्थ यात्रा करो, विधान कर लो, पूजन कर लो, इसमें लगा, पर आत्मा समझ कर और कल्याण कर ली इसमें नहीं लगा। फिर सुबुद्धि मंत्री तो मुनि हो गए, आत्मज्ञानी थे, और वे दूसरे भाव में उन्हें संबोधने विदेश क्षेत्र के, वो क्या कहते भूमि, और उनको तत्व ज्ञान में निमित्त बने, सम्यक दर्शन हुआ और वो जीव निर्वाण को प्राप्त हुई आदिनाथ। तो ये कलेजी वालों का काम है, यानी कौन सुन सकता है कि तेरी मौत आएगी और उसे प्रसन्नता हो जाए कि क्या गजब का समाचार सुनाया ऐसा सुन सकता कोई? कि वो ही जीव नहीं सुन सकता जी। ज्यादा ज्ञान हो, ज्यादा देह आसक्ति हो, ज्यादा संसार में रमा हो, जो निकलना ही नहीं चाहता हो, उसे ये बातें पसंद नहीं आई, उसे कहोगे और कोई बात करो, मरण की बात नहीं करो। परंतु ये मरण की बात नहीं है, ये मृत्यु की, मृत्यु की बात, ये मरण के समय समता बनी रहे उस विद्या का ज्ञान कराया जा रहा है। तो क्या बता रहे अभी कि ये जीव को जैसे घड़ा पक जाता है तो उसमें ताकत आ जाती है काय की, जल धारण की, ऐसे ही जब जीव देह से भेद ज्ञान करके और देह को छोड़ने के लिए तैयार हो जाता है तो उसे फिर भव से निपटने की ताकत आ जाती है, वो बहुत जल्दी पार हो जाती, क्योंकि अब उसे ये बीज रोपण कर दिया उसने एक बार। चौदह नंबर का, सत्पुरुष जिस फल को, यानी आचार्य देव के श्लोक को पढ़े, यत् फलम प्राप्यते सदाभिर्व्रताया सविडम्बना तत् फलम सुख साध्यम स्यान् मृत्यु काले समाधिना। सत्पुरुष जिस फल को बड़े खेद पूर्वक व्रतों को पालन करने से प्राप्त कर पाते हैं, वह फल मृत्यु के अवसर में थोड़े समय को शुभ ध्यान रूप समाधि मरण का सुख पूर्वक साधन करने से प्राप्त हो जाता है। स्वर्ग में जो इंद्रादि पद परंपरा से निर्वाण पद 5 महाव्रतों को धारण हो को करने से तथा तपश्चरण करने से प्राप्त होता है, वह पद मृत्यु के समय में देह कुटुंबादि से ममता छोड़कर भय रहित होकर वीतरागता सहित 4 आराधनाओं की शरण ग्रहण करके कायरता छोड़कर अपने ज्ञायक स्वभाव का अवलंबन लेकर मरण करने पर सहज सिद्ध हो जाता है। यानी कितनी बड़ी उपलब्धि बता रहे, किस तरह से, यानी कभी विचारो कि विश्व में कितने द्रव्य होते भाई साहब? 6 द्रव्य होते, तो इनमें कितने द्रव्य मरे आज तक? एक भी द्रव्य नहीं मरे। तो हमारा इतने बार मरण हुआ तो हम मर गए कि नहीं? नहीं मरे, मरते ही नहीं है आत्मा। ऐसा कभी सर्वज्ञ देव को अपने सर पर बिठा कर और उनकी आज्ञा में आओ कि भगवान ने देखा कि मैं अविनाशी हूं, मैं ज्ञान स्वभाव ही, मेरा मरण नहीं होता, तो आपको इस मौत का डर मिटेगा। और यदि भगवान को नहीं रखा तो आपको ऐसा लगेगा कि अब मरना है, अब बाल सफेद हो रहे हैं, कुछ कितने दिन के हैं, एक दिन तो जाना, फिर कहाँ जाएंगे अपन? विवेक तैयारी है, कहाँ जाओगे? शिखर जी जाना है तो रिजर्वेशन करा, और परभव जाना है तो कोई टिकट नहीं लिया। एक व्यक्ति ने शिखर जी की टिकट ले ली और बैठ गया, खाली गाड़ी दिखी एक दूसरी, तो खाली गाड़ी देख के बैठ गया और पूछा कि विजय भी शिखर जी कितने बजे पहुंचेगी, कि तो बॉम्बे जा रही, शिखर जी तो नहीं जा रही, कि टिकट तो हमारे पास शिखर जी की। हाँ तो शिखर जी की टिकट है तो गाड़ी भी तो शिखर जी जाने वाली पे बैठना चाहिए ना, कि हमें ये नहीं मालूम, सरकार व्यवस्था करे, हमने तो टिकट खरीद ली। अरे तो टिकट खरीद ली है तो उसका निर्णय भी तो होना चाहिए कि टिकट कहाँ लागू होगी। अभी तो और पेनाल्टी और लगेगी। ऐसे ये जीव को ये भगवान मिल गए, ये तत्व मिल गया, ये समझ मिल गई, अब इसका लाभ तो लेना चाहिए। मिल गया मनुष्य पर्याय, बहुत कीमती है, और भगवान मिलना बहुत कीमती है। ऐसा कीमती कहता रहता है और लाभ लेता नहीं, तो ऐसा कहते कहते चला जाता। ना उम्र की सीमा है ना जन्म का है बंधन, निज में निज अनुभव कर बन जाओ सभी भगवन, निज के वैभव से तुम निज को ही धनिक कर लो, शिवपुर के पथिक बनो, यह जन्म सफल कर लो। इसमें उम्र की सीमा यानी छोटे बच्चे को मौत नहीं आएगी, या छोटे बच्चे को सम्यक दर्शन नहीं होगा, या छोटे बच्चे को निर्वाण नहीं हो सकता, ऐसा धर्म नहीं। छोटा बच्चा नहीं है, वो जीव है, और जीव को जीव की रुचि हो सकती है, जीव को जीव का आश्रय लेके केवल ज्ञान मिल सकता है। 8 वर्ष के बच्चे को केवल ज्ञान हो सकता है कि नहीं हो सकता है? क्यों हो सकता है? केवल ज्ञान की शक्ति हो सकता है। अभी इसमें क्या सिखा रहे हैं कि ये देखो मृत्यु आएगी और तुम कायर नहीं होना, ज्ञायक का स्मरण करना, तो तुम्हें बहुत जल्दी इसका फल अच्छा आएगा। और यदि तुमने इसमें शिथिल हुए, हमें मरने में डर लगता, तो अभी मौत तो आएगी और वो देव मरण के डर से एक इंद्रिय पर्याय में पहुंचता है। तो मौत से नहीं डरना है, अज्ञान से डरना, तत्व ज्ञान करना है कि मैं मरता नहीं हूं, अजर हूं, अमर हूं, न मरता कभी, चिदानंद शाश्वत निडरता सभी। संसार के जीव मरते डरे, परम पद का शिवलाल बंधन करे। यानी मृत्यु को महोत्सव मनाते ज्ञानी जन, सारे महोत्सवों में ये अंतिम महोत्सव है मृत्यु महोत्सव। गृह प्रवेश, जन्मदिन का महोत्सव, शादियों के महोत्सव, अनेक महोत्सव होते ना, उसमें सबसे अंतिम महोत्सव कौन सा है? मृत्यु महोत्सव। तो महोत्सव क्यों कहते हैं? इस प्रसन्नता होती किसे? जिसे ये कारागृह बंधन लगेगा उसे, और जिसे ये घर लगेगा उसे छोड़ने में तो पसीना जाएगा, नाम लेते ही मौत आ रही है तो कांप लाएगा। एक वृद्ध माता कहती थी, भगवान उठा लो मर जाए तो अच्छा है, वो सांप आ गया तो कहती बचा लो बचा लो बचा लो, तो मम्मी अभी तो कह रही थी उठा लो भगवान तो मर जाओ, तो बातें कह देना सरल। अभी कहते कायरत है छोड़ो, डरो नहीं। क्यों नहीं डरो? ये डर ना लगे इसकी कला सीखना पर। कब डर नहीं लगेगा? जब तुम्हें ये पता चलेगा कि मैं शरीर का स्वामी नहीं हूं, ये पुद्गल स्कंद की स्वतंत्र रचना है, और ये संयोग है, इसका वियोग होगा और होना ही चाहिए, ऐसा सोचेगा वो जीव प्रसन्न रहेगा। और नहीं तो बहुत तकलीफ है, सारा जगत देखो हाय हाय करके मरता है और कुगति में जाता है। इस काल में बहुत जीवों का है थोड़ा। गुरुदेव कहते थे अपने स्वामी जी, वो कहते थे इस काल में बहुत जैन मर के ढोर हुआ, ऐसा ऐसा संत कहता था एक, जिनको आता था रीडिंग करना, यद्यपि वो अपना जाति स्मरण नहीं लिए थे, पर एक आत्मज्ञानी जीवों को ऐसे ज्ञान का एक विशेष स्पष्टीकरण हो जाता है कि उनको भवांतर दिखने लगते। जैसे श्रीमत जी को दिखती थी, तो वो कोई भी व्यक्ति आता था तो तुम 15 नंबर की गाथा लाए ना समय सार की, तो आपको कैसे मान। बस बैठ अभी चर्चा करते, ये लौकी है ना इसमें नमक ज्यादा पड़ गया ना, कि आपको कैसे पता। ऐसा ज्ञान उनको होता था, तो अब कहां से होता था, अवधि ज्ञान है नहीं, मने पर ज्ञान है नहीं, तो फिर कैसे होता है कि सम्यक ज्ञान में ऐसी स्पष्टता, जिसकी विशुद्धि बढ़ती है उसको ये स्पष्टता भी बढ़ती है। तो स्वामी जी अपने बड़े भाई से कहते थे तू मर के ढोर हुआ पशु बनेगा, और उनका मित्र था पार्टनर उस दुकान का, उससे कहते थे ये नहीं मर के ढोर होगा, तो लोग कहते थे ये भी मंदिर नहीं आता ये भी नहीं आता, तो एक ढोर बनेगा एक नहीं बनेगा क्यों। बोले ये सत्य का अनुमोदन करता है कि ये भले हम मंदिर नहीं जा पाते पर स्वामी जी जिस मार्ग पर चल रहे वो सुखी होने का मां, तो बोले इसे सत्य का पक्ष है तो इसकी कुगति नहीं होगी। और हमारा बड़ा भाई है वो चाहते नहीं मंदिर में, आखिरी में जब बीमार पड़े तो स्वामी जी ने बताया कि वो दुकान दुकान कहते थे दुकान दुकान कौन गया है हमें जाना है, बीमार पड़े और दे छूट गए। इतना अनुमान ज्ञान हो जाता ज्ञानी, और अपन को भी समझ में तो आता है कि अपनी परिणति कहाँ जा रही है। यदि जन्म लेने के बाद चौकी में बार बार घुसे बार बार मौज उठा रहे, इसका अर्थ ये बहुत भूखा आया है नरकादि से त्रियंश से, ये बार बार खाता। और बुढ़ापे में यदि बार बार खाना और भोगना और टीवी दिखे, समझ लेना इसके लक्षण खराब दिख रहे, ये दुर्गति में चला जाए। ये तो आपको पता चल जाता है अनुमान से, क्योंकि जीव को जहां जाना है वैसे भाव उसके होने लगते। तो अपन को कहां जाना भाव का भाव करना है, कहीं जाना आना नहीं है। आत्मा है तो आत्मा को समझ के आत्मा में समाना है, और कुछ नहीं चाहिए अपन को, न जाना है न आना। तो कहते ये देह तो छूटेगी, अब तुम चाहे डरो कायर हो चाहे जो हालत हो, परंतु इस प्रकृति में ये अन्याय तो नहीं हो सकता, ये तो न्याय है। तो समाधि धारक कायरता छोड़कर अपने ज्ञायिक स्वभाव का अवलंबन लेकर मरण करने पर सहज सिद्ध हो जाता है, स्वर्ग लोक में महर्दिक देह हो जाता है, वहां से आकर बड़े कुल में उत्पन्न होकर उत्तम सेनन आदि सामग्री पाकर दीक्षा धारण कर रत्नत्रय की पूर्णता प्राप्त कर और निर्वाण को प्राप्त कर लेता है। देखो एक कुदरत की न्याय, तुम जिसे छोड़ते हो वो तुम्हारे पीछे लगता, और तुम जिसे पकड़ते हो वो तुमसे दूर भाग। जैसे जिस व्यक्ति की पैसे की बहुत पकड़ो तो फिर पाप बनता है, और पैसे के प्रति उदार हो कि खूब खर्च हो खूब दान दे तो उसके पीछे और आता। यानी अपन यदि धन भी बढ़ाना चाहें तो जिस दिन अपन को घाटा हो उस दिन और ज्यादा दान देना चाहिए, क्योंकि ये घाटा उदय से हुआ तो अब वो घाटा ना हो इसके लिए पुण्य बढ़ाओ। तो ये जगत को उल्टा लगता ऐसे ये लगाना, जो संसार के सुख भी चाहते हैं वे संसार के सुखों से अपनी नजर हटाएंगे तो ऑटोमेटिक पुण्य बढ़ेगा, तो फिर संयोग सारे उसके हाथ जोड़ेंगे और उसकी दास्ता से। मुनि होते हैं जो, वो जितना अपना परावलंबन छोड़ते हैं उतने ही नौदा भक्ति करते हुए लुगार के लिए तैयार। तो अपन को ये मानस बनाना है कि देह तो छूटेगा, अपन को कायर नहीं होना है। 16 नंबर का पद है, समस्त तप समाधि के लिए है। 17 नंबर का है, जीर्ण शरीर से प्रीति करना अच्छा नहीं। लोगों को ऐसा कहना है कि जिस वस्तु का अति सेवन अति परिचय हो जाता है उसमें अवज्ञा और अनादर होने लगता है, रुचि घट जाती है। जिसका नया साथ होता है उसमें अधिक प्रीति होती है, ये बात प्रसिद्ध है। किंतु हे जीव, तूने इस शरीर का बहुत समय से सेवन किया, अब इसका नाश यानी अभाव होने पर नए शरीर की प्राप्ति होने से ये तू क्यों डर रहा है, भय करना उचित नहीं है। अभी एक देखो, एक सूक्ति बताई उन्होंने, कहते जैसे बार बार कोई आदमी अपने घर आए तो फिर अपन उसके प्रति फिर अलर्ट नहीं होती, सावधान नहीं होती कि अभी बार बार आ रहा है तो बार बार कहें आइए बैठ जाए, आइए आइए, एक बार कहेंगे दो बार कहेंगे, अब दिन भर ही आता है तो उसे थोड़ी हर बार कहेंगे आइए बैठ जाए आइए बैठ जाए, यानी अवज्ञा होने लगती। तो ऐसे ही वो कहते हैं कि ये दिन भर आपके साथ रहता है, तुम्हारी चित्त से उतरता नहीं। ये तो लोक में कोई दूसरा व्यक्ति आता है तो आपको ऐसा लगने लगता है कहां तक आता है, इसको लगता नहीं और कोई काम नहीं, अवज्ञा होने लगती, और ये दिन भर साथ में लगा रहता। तो ये कि सोचने के लिए विषय दे रहे, ये किसका है मान भाव, ये गुणभद्राचार्य देव का है आत्मानुशासन, ये वाला पद अति परिचित अवज्ञा नवे भवेत प्रतिरीति ही जनवाद है तुम किमति मृषा कुरसे, तुम झूठ बना रहे, ये युक्ति को भी झूठ सिद्ध कर रहे, ये तो जगत में प्रसिद्ध है, रोज रोज आप रोटी दाल चावल रोटी खाते खाते उगता जाते, आज दाल बाफले, आज इडली डोसा, आज कुछ अलग बनना चाहिए, ऐसा अपना मन बोलता रहता। तो ये कह रहे हैं कि वहां तो तुम्हारा दिमाग ठीक चलता, अब धर्म के क्षेत्र में क्यों नहीं चलता, यही शरीर यही शरीर यही शरीर, सवेरे भी आईना में वही देखा, शाम को भी वही देखा, रात को सोते सभी भी वही आईना लगा रखा है, बाथरूम में भी लगा रखा, मंदिर में भी लगा रखा है, तो इसे भुलाओगे कब? पागलों की दुनिया में क्या करोगे? समाधि मरण से उत्तम गति की प्राप्ति होती है। इस प्रकार जो भय रहित होकर समाधि मरण में उत्साहित होकर चार आराधनाओं का आराधन कर मरण करता है, उसी स्वर्ग लोक के बिना अन्य गति की प्राप्ति नहीं होती। स्वर्गों में महर्दिक देव ही होता है, महर्दिक समझ गए, महान रिद्धियों का धारी, अच्छे भवनात्रक आदि में तुच्छ देवों के साथ नहीं जन्म होते, वहां तो मिथ्या दृष्टि जीव जन्मते भवनात्रक। तीसरा निश्चय, स्वर्ग में आयु के अंत तक महासुख भोग कर इस मनुष्य लोक में पुण्यवान निर्मल कुल में अनेक लोगों द्वारा इंतजार करते करते जन्म लेकर अपने सेवक जनों कुटुंब परिवार पुत्र मित्रादि जनों को अनेक प्रकार के इच्छित धन भोगादि रूप फल देकर पुण्य से प्राप्त भोगों को निरंतर भोग कर आयु पूर्ण होने तक थोड़े समय को पृथ्वी मंडल पर संयमादि सहित वितराग रूप होकर विहार करके जैसे नृत्य के अखाड़े में नृत्य करने वाला पुरुष लोगों को आनंद उत्पन्न करके चला जाता है, उसी प्रकार वह सत्पुरुष भी सभी लोगों को आनंद उत्पन्न करके स्वयं ही देह त्याग करके निर्वाण को प्राप्त हो जाता है। किसा कठिन सा लगता है ये काम, है ना, मरना, नाम सुनने से ही घबराहट होती है, अब ये घबराहट दूर कर रहे हैं। वो कहते बिल्कुल नहीं घबराना चाहिए, अब घबराहट तो नहीं हो, आपने तो सही कहा, पर हुए कैसे नहीं? तो कहते अभी से आदत डालो भेद विज्ञान, किसे भेद विज्ञान की डालो, कि जरा सी बात में घबराना नहीं चाहिए, प्यास लगी तो एकदम से तूफान मचा देते, कुछ देर सुनते नहीं, पानी नहीं दे सकता इस घर में, कोई कीमत नहीं, जरा सा सिर दर्द हुआ दवाई लाओ, थोड़ी सी थकान हुई, मतलब जीव यदि अनुकूलता बनाने के नाम से देह को मुख्य करता रहेगा तो कभी समाधि नहीं, दूसरा किसी को दोष लगाता रहेगा तो कभी समाधि नहीं, निर्दोष जीवन पूरा विश्व निर्दोष दिखे उसे, पूरा विश्व क्यों, क्योंकि भगवान को निर्दोष दिखा छह द्रव्य मई व्यस्त तब वो राग द्वेष टूटे। चंदन वाला का इसमें हमने एक भजन भी लिखा है ऐसा, तो उसको अब टाइम नहीं अपने, उसमें चंदन वाला का ये कथन आया कि उसे धर्म मां ने बेड़ियों में डाल दिया, एक कोठे में बेड़ी डालकर और कैद जैसा कर दिया, बाल मुड़ा दिए, भोजन देना बंद कर दिए। अब जो धर्म पिता ऋषभ दास उसे बेटी बनाकर लाई थी, 4000 स्वर्ण मुद्राएं देकर बिस्या बाजार से चंदन वाला को खरीदा। कौन है ये चंदन वाला? महावीर भगवान की मौसी लगती, इतना उत्कृष्ट जीव। कितनी अर्जिकाओं में श्रेष्ठ थी मान? 36000 अर्जिकाओं में सर्वश्रेष्ठ गणनीय अर्जिका थी, बहुत उत्कृष्ट जीव था। और ऐसे व्यक्ति को, वो व्यक्ति जो कभी वेश्या बाजार से न निकले, धर्म पिता ऋषभ सेठ, और इतना न्यायी समकिति आत्मज्ञानी तो था, रोज प्रवचन करने वाला, मंदिर की पूजनादि कार्य संभालता था, ऐसा धर्मी जीव, और जिस समय उसका व्यापार करने के लिए मानस बना के निकला, तो उस दिन उस तरफ से घोड़ा निकला उसका, कहां से? जहां वेश्या बाजार, प्रकृति में कैसा मेल बैठता। वहां चंदन वाला नीची नजर करके रमोकार मंत्र पढ़ रही, और यहां से ये व्यक्ति निकला, तो इसकी आंख भी कैसी उठी? कभी क्यों उठाएगा कोई ज्ञानी धर्मा? तो उसी समय उनकी नजर भी वहां गई, और नजर वहां जानते ही उन्हें लगा कि ये कोई कर्म के उदय से फंसा जीव है, इसकी नजर नीची है और वहां से कुछ पढ़ रही, तो वह पास आएगा और रमोकार मंत्र सुना। अरे ये तो कोई आराधिका, अरे कैसे उदय इस चक्कर में कैसे आ गई? सेठ जी आप कैसे आए इन्हें खरीदने के लिए? अच्छा इतनी उम्र में तुम्हें भी चस्कर लगा, तुम्हारी भी नियत खराब हो गई, तुम्हारे भी प्रणाम बदलने लगे? कुछ नहीं बोली, हृदय में धर्म भरा है, जगत क्या पहचाने ज्ञानी को? उसकी पत्नी नहीं पहचान पाई और जगत क्या समझ पाए? कुछ नहीं बोली। कितनी मुद्राएं लेगी? 4000 मुद्राएं सोने की, जो व्यवसाय के लिए जा रहे थे उसे दे, उससे बढ़ा के कोई दे नहीं पाए, और उसे कहा बेटी अपने घर चल। अगर बेटी शब्द सुना होगा तो उसके कितने कष्ट रहे होंगे माँ की, कैसा लगा कि यानी आतंकवादी ने बाबूजी अपन को पकड़ लिया हो, और अपन अकेली आंखों में काली पट्टी, पीछे से हाथ बंधे हैं, मुंह में रुमाल डला है, कार में बांध के ले जा रहा है। उस समय की कल्पना करो आप कि आपके चित्त में क्या आता होगा कि कैसे छूटे, कैसे छूटे। परंतु चंदन वाला के चित्त में ये नहीं आता था, ये आता था कि क्या उदय खेल खिलाता है, देखेंगे देखेंगे, ज्ञाता बन के रहेंगे, देखो हमारा क्या बिगाड़ सकता है। और ऐसे विचार में जैसे सुना बेटी कह रहे पिता मिल गए, हमें घर मिल गया, तो सुरक्षित समझ के उनके घर आए। बेटी धर्म पिता के यहाँ आई, बिल्कुल चिंता नहीं करना, आपका घर, अपने अच्छे से रहना। अब सिद्धानी को लगा कि इस बुढ़े को क्या हो गया, इतनी उम्र में ऐसी मति कैसे हो गई, कुछ सोच नहीं सकता, क्योंकि ज्ञानी नहीं थी ना वो सेठानी, तो वो ज्ञानी को नहीं पहचानती थी कि हमारा पति किस तरह का, तो दोष लगाने लगी, मन में लगा तो नहीं सकी, चढ़ने लगे, और इसने मेरी शांति भंग की, जबकि वो कुछ नहीं कर रहे, वो मामा करती थी। कहां से आ गई नागिन कहीं की, वो कहती मम्मी आपको तकलीफ तो नहीं हो रही, मतलब वो उदय को खेल देखती थी कि क्या क्या हो सकता है जगत। और जैसे ही सेठ बाहर गया, और सिर्फ चंदन वाला को उसने सबसे पहले तो ये तेरे बाल है ना सेठ ने उस दिन उठा के रखे थे, मैंने देखा था, इसको पहले कटवाऊं, पहले बाल मुड़वाए, सुंदरता नष्ट होने चाहिए, सफेद साड़ी पहनाई और हथकड़ी डाली, सब तरह से जो बन सकता था उसको भोजन नहीं देना, कोठे में रख दिया। और जैसे सेठ के आने का तीसरे दिन नंबर आया, तो उस दिन वो घर से बाहर चली गई, नौकरानी रह गई, और भूल गई किसी गर्म पानी और जी कोदों के दाने दे देना। सेठ जी आए, कोई नहीं, कोई उतरे नहीं दे रहा, कहां है बेटा चंदना? कोई नहीं बता रहा, पता चला कि इसमें पड़ी, तो बहुत दुखी हुए कि बताओ अपन किस के लिए लाए थे, तो बेचारी यहां सुखी रहे थोड़ी, और इसको तो ये उदय देव कैसा। तो वो गए बढ़ई को, बेड़ी कटवाने के लिए, और यहाँ मुनि महावीर की विधि इसी जाति की थी, 175 दिन की विधि नहीं मिल रही थी। क्या विधि ली थी उन्होंने कि कोई छत्राणी राजकुमारी हो, सिर पर बाल ना हो, हाथ पैर पर बीड़ी पड़ी हो, एक पैर चौखट के दरवाजे के बाहर और एक पैर भीतर हो, और आखिरी विधि क्या थी जय थी, आंख में आंसू भी होना चाहिए। वो सारी विधि मुनिराज पधारे, महावीर स्वामी आ रहे, महावीर सारे लोग, क्योंकि 175 दिन हो जाए और जंगल से आए कौसाम्बी से वापस चले जाएं, तो सारे कौसाम्बी के लोग अपने आप को ऐसा हीन देखने लगे थे कि कौन सा पाप का उदय है, हम लोगों को इतनी भी अकल नहीं आ रही कि विधि मिला सकें, और तीर्थंकर का द्रव जीव और ये सब लूटता है हमारे राज्य को। खूब मीटिंग होती थी, खूब सोचते थे लोग, कितना विचार करते थे, किसी की कल्पना ही में नहीं आती थी कि ऐसी भी अटपटी विधि हो। और जैसे ही मुनिराज आ रहे हैं ये सुना, तो वो बैरागी जीव कैसे शांत बैठ सकता है, एकदम से उठ के भागा। उसने ये नहीं देखा बाबू जी की पैर में और हाथ में बेड़ी पड़े, ये देखा कि महाराज मुनिराज, समझ में आया ये संसार कैसे छूटता है और मोक्ष मार्ग कैसे प्रकट होता है। जब तक तुम ये देखोगे कि हम घर से नहीं निकल सकते, तब तक नहीं निकल सकते। जब ये देखोगे कि बहुत जीव निकल गए, हम क्यों नहीं निकल सकते, तो प्रकृति तुम्हारा साथ देगी और निकल जाओगे, भावनाओं का फल आता। तो ये भागी तो बेड़ी टूटी, और बेड़ी टूटने पर मुनिराज सामने खड़े हो गए, और खड़े होकर के देखा कि सारी विधि मिल गई है, एक बात की कमी। कौन सी बात की कमी है? आंख में आंसू नहीं। तो जैसे ही मुनिराज लौटे तो रो पड़ी दास। किसको ऐसा लगेगा कि हमारे घर से कोई ऐसे लौट जाए, पानी भी ना पिए, व्यवहार ना हो, फिर भगवान बनने वाला जीव किसी चैन पड़ जाए, तो बहुत दुखी हो गए, आंख से आंसू आए। और महावीर ने ऐसा मुड़के देखा, पूरी विधि मिल गई। अब पूरी विधि मिल गई तो हार हुए निर्दोष हार, और पंचाश्चर्य हुए, सारे नगर में प्रसिद्धि हुई। ये दासी और इसके हाथ से महावीर ने हार लिए, ये क्यों आए होंगे भगवान? क्योंकि ये अभिशाप मिटाना था कि इतनी पवित्र जीव को आपने कलंकित माना है, दासी बना के रखा है, ये तो भगवान बनने वाला जीव, आत्मज्ञानी जीव, ये अभिशाप मिटाने के लिए मानो महावीर उस घर में आए थे। अब सेठ जब तक लाया कर्मचारियों को बेड़ी तोड़ने के लिए, तब तक तो दूसरी माहौल हो चुका था, मेरी बेटी की हाथ से हार हुई, सारे लोग प्रसन्न थे। अब बताओ आखिरी में उस सेठानी को क्या लग रहा हो, इतना धक्का लगा उसे, खेरे मेरे घर में कोई संत बैठा था जिसे महावीर रजिस्टर्ड कर रहे, जिसके ऊपर सील लगा रहे महावीर स्वामी 24वें तीर्थंकर, और हम उसे नहीं पहचान पाए, हम कैसे पापनी। बहुत दुख हुआ उस सेठानी को, रोने लगी, पैर पकड़ लिए, बेटी मैं बहुत नालायक हूं, मैं बहुत अज्ञानी हूं, मैं तो नहीं पहचान पाई। तो मानो उस लड़की ने क्या कहा कि मम्मी आप ही ने विधि मिलाई, यदि ये सब तैयारी आप नहीं करती, बाल नहीं मुड़वाती, बेड़ी नहीं डालती, रूखा सूखा नहीं देती, इस तरह की जो विधि है वो आपने मिलाई है, आपका बड़ा उपकार है, आप तो हमें मां के तुल्य हो। हमें ये कहना बाबू जी इस कहानी में कि ये जो घटना चंदन वाला के साथ घटी, ऐसी अपने साथ दिन भर घटती कोई ना कोई रूप, और आप ऐसा चंदन वाला बन के बताओ, आप दोष ना दो जब जाने आपने समय सार सुना। उसने लड़की ने कैसे जीवन जिया होगा, इतना बड़ा संकट, 3 दिन तक भूखी रो रही थी, पिताजी 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 सेठ जी को याद करती थी, क्योंकि वही शरण दिखती थी इस घर में, और कोई सुनने वाला नहीं था, कहां जाए बेचारे। और पिताजी आए, रिश्ते में बड़े पिताजी आ गए, भगवान आ गए घर में, और अच्छे से निर्विघ्न आहार हुए। भगवान के माध्यम से प्रसिद्धि हुई कि पवित्र जीव, फिर सारे नगर में प्रसिद्धि हुई, सब लोग आए, राजा भी आया कौसाम्बी नरेश, और उसकी पत्नी भी आई। वो पत्नी थी चंदनवाला की बहन, और उसी नगर में, और उस नगर वालों को पता नहीं है कि इस चंदनवाला इस मृगावती सेठानी की रानी की बहन तो यहां रहती। मृगावती ने कहा कि किसने दशा बनाई, ऐसा किसने किया हमारी बहन के साथ। बहन बहुत अच्छा किया, जिसने भी जो किया है सब महावीर की विधि मिलाने के लिए, इसे कोई दोष का। अब आप घर चलो, ऐसा कहेगा ना, मोही क्या कहेगा, ये तो कहेगा अब बहन घर चलो। उन्होंने कहा कि अब घर तो जाएंगे पर अपने घर जाएंगे। अब बहुत देख लिया संसार का नाटक, अब हमें महावीर स्वामी के केवल ज्ञान की प्रतीक्षा है। जैसे ही भगवान को केवल ज्ञान हुआ और हमने जिनेश्वरी दीक्षा धारण, एक कथा में हमें ये सुनाना था कि देखो चंदन वाला जैसा जीवन बनाना है, क्योंकि आप और हम इतना पुण्य तो लेके आए नहीं कि अपने सारे इच्छित काम हो, और ये सिखा रहे हैं कि रोग आए अच्छी बात है, मौत आए अच्छी बात है, अपने घर में अपनी नहीं चले वो और अच्छी बात है, अपने अनुसार कुछ हो जाता तो अपना मिथ्यात और पुष्ट होता, क्योंकि हमने कर लिया, हमने कर लिया। नहीं होता है तो सोच सकते हो कि देखो वस्तु का परिणाम स्वतंत्र, जब नहीं होता है और हो जाता है तो क्या होता है, देखो एक काम ये कर लिया है अब एक और निपटा देंगे, अब एक और दिन अपन वो काम नहीं होते, इसका मिथ्यात पुष्ट होता है। अरे रोग आना, इस रोग तुझे ज्ञान में आएगा, और ज्ञान में आना यानी ज्ञान की याद आना कि ये रोग है, तो तेरा ज्ञान खड़ा होने लगा, इसमें तेरा कल्याण होगा कि तुझ ज्ञान का स्मरण करे, याद कर। और जीव ज्ञान को भुला देता है, जो दशा हो रही सब जानते। तो ये जन्म मरण के मेली से अपन को कैसे निपटना है, शरीर के एक एक परमाणु स्वतंत्र हैं, वो तो बिखरेंगे, जैसे मेला होता है ना, सब मिलते हैं और फिर परमाणु सब व्यक्ति अलग अलग हो जाते, ऐसे ही जीव के साथ देह के परमाणु जो इकट्ठे हो जाते हैं और फिर सात धातु में जहाँ पंचभूत तत्वों में सब सही मिल जाता। इसलिए देखो कभी भी मौत आ जाए बिल्कुल नहीं घबराओ, क्योंकि हम मरते ही नहीं ना, आप तो चैतन्य ज्ञायक की जगह खड़े हो तो डर नहीं लगे, और जहां तुमने कहा कि अरे मौत आ रही हमें बहुत डर लग रहा, मतलब तुम मनुष्य पर्याय में आ गए, अब मनुष्य पर्याय में आओगे तो परिणाम बिगड़ेंगे। इस तो संयोग जानो, पड़ोसी जानो, मृत्यु को कल्प वृक्ष जानो, दातार जानो, बंदी ग्रह से छुड़ाने वाला जानो, मान उपकारी जानो, जैसा अपन अभी समाधि पाठ में रोज पढ़ते। तो एक चार गति का आपको चित्रण सुना रहे कि जिससे जीव को पता चले अपन चार गति में कितना कष्ट भोगते और उससे विरक्त कैसे हो।
लक्ष्य बिंदु का कभी नाम पता लगा सके, खोजती रही सदा मगर न पंथ पा सके, मगर न पंथ पा सके।
चार गतियों का चित्रण।
दिव्य देव गति मिली जहाँ की सुख अपार था, फूल की सुगंधि सासु देवियों का प्यार था, क्या गजब बहार थी कि क्या अजब खुमार था, भोग वस्तुएं अनेक भोगना भी भार था, मुग्ध हो गया हृदय बन गया कि ज्यों अभय, भूल गया कि काल चक्र है नहीं सदय।
अपन भूल गए कि कितनी उम्र निकल गई, सागरों की उम्र ऐसी निकलती जैसे कलई तो आए थे अपन, ऐसा समय बीतता अनुकूलते रहते ना, कोई एक्सीडेंट नहीं, कोई बीमारी नहीं, कोई भूख के चक्कर नहीं, प्यास की तकलीफ नहीं, मित्रों की जल्दी वियोग नहीं, पत्नियों के ढेर हैं, पैसे के ढेर हैं, सारी समृद्धता है, अब वो काय को सोचेगा कि हमें देह छोड़ना।
मुग्ध हो गया हृदय बन गया कि ज्यों अभय, भूल गया कि काल चक्र है नहीं सदय।
काल को दया नहीं आती ये भूल गया।
और एक दिन ढली वह खिली हुई कली, दुख हुआ बहुत कि हम जरा नहीं अघा सके। खोजते रहे सदा मगर न पंथ पा सके, मगर न पंथ पा सके।
अपन ये सोचते ना कि इतनी साधना कर रहे हैं, मंत्र पढ़ रहे हैं, मंदिर आ रहे हैं, हम मर के देवगति जाएंगे। कि देवगति क्या नहीं सुना अभी, कि देवगति में रहने वाले तो तरसते हैं मनुष्य होने के लिए है? और ये मनुष्य तरस रहा है कि हम देव हो जाए, यानी अभी दिमाग काम नहीं कर रहा। जब देव गति में भोग गति है वो सुख नहीं है, और वहां आत्मा का विस्मरण रहता है क्योंकि अनुकूलता के ढेर हो। जिसकी यहाँ ज्यादा दुकान चले, ज्यादा काम चले, फिर आत्मा के पास नहीं बैठ सकता।
नरक का, नरक में गया कभी जहां महान क्लेश था, वेदनाएं अपार थी तथा विचित्र वेश था। मार काट चीर फाड़ से भरा प्रदेश था, रक्त पीप मांस का समुद्र वह अशेष था।
क्या है वहां पर? रात दिन लड़ाई, मारो काटो पटक दो चीर दो। कौन? जो रात में खाते, जो कंदमूल खाते, जो अन्याय करते, जो सत्य व्यसन करते हैं। अभी तो डर नहीं लगता परंतु फल तो आता परिणाम।
मारे काट चीर फाड़ से भरा प्रदेश था, रक्त पीप मांस का समुद्र वह अशेष था। दम लगा घुटा घुटा प्राण भी लुटा लुटा, किंतु पूर्ण आयु तक उसी जगह रहा डटा।
सीता जी का जीव गया था रावण को लक्ष्मण को निकालने के, निकाल के ला सका? क्यों नहीं निकाल के ला? कोई किसी को सुखी दुखी नहीं कर सकता, कोई किसी की साता वेदनी असाता वेदनी नहीं बन सकता, कोई किसी पर जिस किसी का असर नहीं पड़ता, कुछ करता तो नहीं चलता। वो पारे की तरह बिगस जाता था उनका सही।
दम लगा घोटा घोटा प्राणी भी लुटा लुटा, किंतु पूर्ण आयु तक उसी जगह रहा डटा। भूख भी न मर सकी, प्यास कब उबर सकी, थे बड़े चतुर न किंतु कर्म को हटा सके।
यानी कोई वकील चले जाए दिल्ली भैया, तो वहां उसके पॉइंट चलते होंगे कि नहीं, दफा अफा कानून नानून है? कहते बहुत चतुर चले जाए, अच्छे इंजीनियर डॉक्टर वैद वकील पंडित त्यागी जो भी जाए, वहां उसकी चतुराई चलती हो और उसके साथ जैन साहब आए हैं थोड़ी इनको कम्पीट ना, ऐसा कंसेशन होता हो? क्योंकि छना पानी पीते थे और बिलछानी को लटकाए रहते थे, होगा कंसेशन?
थे बड़े चतुर न किंतु कर्म को हटा सके, खोजती रही सदा मगर न पंथ पा सके, मगर न पंथ पा सके।
अब त्रियंची गति में गए। अब
पशु हुए कभी तो भार कर बहन सदा फिरी, हीन बल हुए तो आयु भर रहे डरे डरे।
आपके यहां तो कोई पशु भी नहीं दिखता, इतने ज्यादा आदमी खतरनाक हो गए कि उनके सामने पशु ठहर नहीं पाते।
ज्ञानहीन जिंदगी विकास किस तरह करे, बंधनों के बीच
घोर वेदना लिए फेरे। हमने ऐसे सुअर को देखा कि जिसके मुंह में इतनी लाड डाली और यहां से निकाली ऐसी, और सूर्य लाड डालते ही तड़प के मर गया वो, और फिर उसे अग्नि में नीचे अग्नि जलाई और रोलर ऐसा बनाया, दो स्टैंड लगाए ऐसे, और इसके भीतर उसको फंसाया और ऐसा घूमता था वो ऐसा सुअर। सुअर पसेनी पंचेंद्री जीव को ये जीव जीव नहीं मान रहा, कितना कठोर हो गया आज का काल। यानी मशीनरी युग में पहले तो व्यक्ति को मांस खाना है तो एक जानवर को मारेगा, हिरण को मार के लाएगा, जिसको मारना वो मारे। अब तो क्या हो गया कि अब तो मशीनें काटेंगी ना जी, क्योंकि उसे साथ में नरक तो नहीं जा सकता, पर नारकी का हृदय बहुत नारकी जैसा हृदय। अकबर राजा था ना बाबू, और अपने दीवान अमरचंद जी, तो किसी ने शिकायत कर दी कि दीवान अमरचंद जी अहिंसा धर्म का धारी है, ये आपका साथ नहीं दे सकता, आपके साथ चाहिए तो अच्छा बोल्ड व्यक्ति चाहिए, आप इसे ले जाके देखो जरा ये क्या करता। तो उसी परीक्षा के लिए इनने शेर बंधवाया था और उसी व्यक्ति से शिकार करने के लिए कहा था, चलो हमारे साथ चलना पड़े, सब जैन साहब हैं हम लोग, हम तो पानी छान के पीते, रात में खाते नहीं, किसी जीव को सताते नहीं, आपकी नौकरी करते, आप जैसा कहोगे तो करते, चलो हमारे साथ चलना। तो चले, और सब हिरण भागे जा रहे थे, ये भी भागे जा रहा था राजा, तो दीवान अमरचंद जी ने जोर से आवाज लगाई, रुक जाओ, जब रक्षक ही भक्षक बन गया है तो किसकी शरण में जाते। सब हिरण रुक गए, ले आओ आपको किस हिरण की जरूरत, कितनी आवाज में ताकत है वो सुन लिए थे। ये अहिंसा की आवाज है, महावीर स्वामी की आवाज, हमारा हृदय किसी को छूना भी नहीं चाहता, कष्ट नहीं देना चाहता, और आप राजा हो के ये मूक प्राणियों की जान ली थी, कहना तो अच्छा नहीं लगता, अपन सीधा मांस तो नहीं खाते पर दूसरे रूप में खाते, अपने गंदे भोजन जो बाजार के अपन लाते हैं तो इनडायरेक्ट मांस खाते, क्योंकि बाजार में कौन सी चीज अच्छी होगी जो आप खा सको, कभी उनकी सामग्री देख लो तो आपके ऐसा छूने का मन नहीं हो। हमारे एक कवि थे भाई, और वो चाय पीने गए होटल में, और उन्होंने सामने देखा कि उसको सर्दी थी जो चाय बना रहा, तो उसने ऐसी नाक निकाली और ऐसी फेंकी तो वो किटली में इतनी चाय उबल रही थी उसी में पड़ गई, तो उसने जल्दी से ली और छान के बहू जी लीजिए, और सब पी गए। तो क्या पी जाते हैं लोग, नाक पीते हैं कि मलमूत्र पीते हैं। अभी गए थे कौन से छिंदवाड़ा, तो उन्होंने कहा कि पानी पूरी को खारा बनाने के लिए जल को पेशाब करने लगे सब, पहले तेजाब से पानी बनाते थे, खट्टा लगना चाहिए विशेष खटाई से ज्यादा, अब वो पेशाब डालते हैं वो भी खट्टी लगती खारी लगती, ये कितनी गंदगी बढ़ रही है जीव को क्या हो गया। एक टमाटर बेचने वाला है जबलपुर में, आधे ठेले में सड़े टमाटर रखे थे, तो हमने उससे पूछा कि भाई साहब ये सड़े टमाटर काहे को रखे, कि अब भी होटल वाला ले जाएगा पूरे खरीद लेगा क्योंकि बहुत सस्ते बिकने हैं। तो हमने कहा क्या करेगा ये, मिक्सी चलाएगा और सब पता नहीं चलेगा कहाँ। ऐसे काल में अपन जन्मे हैं, कितना सोचना पड़े। अब ये दशा पशुओं की हो रही, पशु हुए कभी तो भार कर बहन सदा फिरी, हीन बल हुए तो आयु भर रहे डरे डरे, ज्ञानहीन जिंदगी विकास किस तरह करे, बंधनों के बीच घोर वेदना लिए फिरे, पाप से घिरे घिरे पंख में गिरे गिरे, साथ के निकल गए परंतु हम नहीं तेरे, सोचते यही रहे एक फिर लहर बहे, इंतजार में रहे न चेतना जगा सके, खोजते रहे सदा मगर न पंथ पा सके। अपने जीवों को खाया तो फिर वो अपन को नहीं खाए ये सब बंद होते रहे, तब हम उन्हें खाते वो हमें खाते। शेर ने मेमना को खाए, अब मेमना दूसरी गांव में शेर होगा और ये शेर होगा मेमना, तो उसे खाएगा। अब अपन कह रहे कि महाराज जी आपको दया नहीं आती, कि भैया किस पे दया करें, ये उसे खाता वो उसे खाता, हमारा काम तो ज्ञाता देना। अब मनुष्य है, पुण्य बंदे कुछ हुआ मनुष्य का मिला भवन, सुनना सभी लोग, पुण्य बंदे कुछ हुआ मनुष्य का मिला भवन, धन वैभव अधिक हुआ उसी में एकदम मगन, चाटुकार राह दे उसी तरफ बड़े चरण, न सत्य की लगन रही न धर्म ध्यान में है मन, बात बात पर अड़ी नैनी भी चढ़ी चढ़ी। बताओ क्या करना, ये कहां से बोलने लगा ये मुद्रा कैसे बदल जाती इसकी, मान बोलता अकड़ बोलती है, अब ये नॉर्मल नहीं रह गया। जैसे वो शराब पी के शराबी बोलता है अबे रज्जू हाथी बेचेगा, तो वो कौन बोलता है, आदमी के शराब बाते बाते पर अड़ी नैने भी चढ़ी चढ़ी, शान के मकाने पर गुमान से हुए खड़े ये हमने वहां पढ़ा शिखर जी में, बाबू जी थे उस समय, बोले ये फिर से पढ़ो ये लाइन, शान के मकान पर गुमान से हुए खड़े, दैव था भी हंस रहा मूर्ख आप फंस रहा, चक्रवर्ती भी न भाग्य पल कभी हटा सके, खोजती रही सदा मगर न पंथ पा सके। अंत में भाग्य साथ दे गया, अब अपने लोगों के बीच की बात है, महापुण्य का उदय है बाबू जी, इस समय भगवान भी मिल गए, मनुष्य पर्याय भी मिल गई, कसाई भी मंद है, समझ में भी आ रहा है, साधर भी चार बैठे हैं, सबका अच्छा लग रहा है। अब सोचना जरा कहाँ रुकता है जी यहाँ तक तो बहुत प्रॉपर गाड़ी चल रही है। भाग्य साथ दे गया महाव्रती हुए कभी, ये अपने में लगाना, पंडित त्यागी धर्मात्मा पुजारी हुए कभी, राग देश पुण्य पाप आदि छोड़ कर सभी, भूख प्यास शीत घाम आदि से उठी सभी, ख्याति हो गई कि व्यक्ति है बड़ा भी, ये बहुत बड़ा व्यक्ति, ये तो बहुत समर्पित जी दिखता है। भक्त कुछ बड़े बड़े सिर झुका हुए खड़े, डगमगा गए कदम न रह सके वहीं अड़े, काय में गाफिल हुआ है, प्रशंसा कीर्ति मिली ख्याति मिली, जरा सा धर्म में लगो आप एकदम प्रसिद्धि होती, पुण्य बढ़ जाता है, चार लोग हाथ जोड़ने लगते। अब ये समझता है जैसे हम तो राजा बाबू हैं और तो कुछ समझते नहीं, ये कह रहे भैया ये ख्याति को जीतना बहुत ताकत लगेगी। अब ख्याति हो गई कि व्यक्ति श्रेष्ठ है यही अभी, भक्त कुछ बड़ी बड़ी सिर झुका हुई खड़ी, डगमगा गए कदम न रह सके यही अड़ी, कौन काम आ सका कीर्ति से बचा सका, कहाँ पे फिसलता है जी, ये प्रशंसा, कौन काम आ सका कीर्ति से बचा सका, खूब प्रकाश पास का न और ज्योति ला सके, खोजती रही सदा मगर न पंथ पा सके, मगर न पंथ पा सके। टाइम ज्यादा हो गया ना, सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्मस्वरूप, सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्मस्वरूप, सहजानंदी
शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्म स्वरूप सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्म स्वरूप सहजानंदी अविनाशी हूँ आत्म स्वरूप।
बोलो ऋषभदेव भगवान थी महावीर भगवान पर्यंत 2400 तीर्थंकर भगवान नो जय हो। सीमंदर भगवान थी अजित वीर भगवान पर्यंत 20 वीरमान जिनेन्द्र भगवान नो जय हो। अखंड साधना ना प्रतीक एवं श्री बाहुबली मुनिन्द्र भगवान नो जय हो। द्वादशांगी जिनवाणी मात नो जय हो। कड़िकाल सर्वज्ञ श्री कुंकुंद आचार्य अमृतचंद्र आचार्य आदि समस्त गुरु भगवंतो नो जय हो। अपना अनंत अनंत उपकारी एवं श्री सदगुरुदेव श्री कांजी स्वामी नो जय हो। ज्ञान ध्यान वैराग्य ना अनुपम साधक एवं प्रसम मूर्ति भगवती मात नो जय हो। करुणा कृपा निदान कृपाणु देव नो जय हो। मोक्ष मार्ग नी अनुपम रचना करना रेवा पंडित तोदरमल जी नो जय हो। अष्टानिका महापर्व नो जय हो। सत्य सनातन दिगंबर जैन धर्म नो जय हो। निज निधि निज में बताई यह अनंत वंदना शत बार है।